हरे कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13, टेक्स्ट नंबर 8। यह ज्ञान की सीढ़ी है जिसे भगवान श्री कृष्ण हमें स्टेप वाइज चढ़ा रहे हैं। इसमें से हमने तकरीबन 11 स्टेप पार कर लिए हैं और कुछ स्टेप और भी रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोगों के एक क्वेश्चन को तो सॉल्व करते हुए चलूंगी कि ये सब इतना सारा ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं वो प्राप्त करना है या इसको अपने जीवन में उतारना है, उसकी क्या वजह है, हम ऐसा क्यों करें, ज्ञान प्राप्त करने से क्या होगा। तो इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण 4.39 में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम लब्धा परम शांति, कि यदि आप ज्ञान प्राप्त करोगे तभी आपको परम शांति प्राप्त होगी। क्योंकि देखो, हम संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं वो शांति हासिल करने के लिए, सुख हासिल करने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 4.14 में बताते हैं, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मना। क्योंकि जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी, तो उस इंसान के लिए ना इस लोक में सुख है, ना यम लोक को अस्ति न परो, ना इस लोक में सुख है और ना ही परलोक में। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि शायद वो ज्ञान जो सांसारिक होता है, जो संसार में सब लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं कहीं जाते रहते हैं, स्टडीज करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है, वेद्यम वास्तवमोत्र वस्तु शिवदम तापत्रय मूलनम। ज्ञान तो वास्तव में वह है जिसे प्राप्त करने के बाद आपकी समस्त मुश्किलें, समस्त कठिनाइयां, समस्त तकलीफें दूर हो जाएं। और वह ज्ञान क्या है, वही भगवान श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं, जिसमें से हमने अब तक क्या क्या सीखा है। आमानित्वं अधम्भित्वं अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्यो पासनं शौचं स्थैर्यात्मा विनग्रहः। यहाँ तक पढ़ा और उसके बाद ये 8वां अध्याय कंप्लीट हो गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें क्या बताया, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम। और आगे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 9 में कहते हैं, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम्। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्, इंद्रियों के को उनके विषयों का परित्याग करना, यानी इंद्रियों से उन्हीं चीजों को स्वीकार करना जो कृष्ण भक्ति में हमारे लिए सहायक हो। अनहंकार मतलब अहंकार। अभी अहंकार को हमने नहीं पढ़ा ना, उसके बारे में अभी हम भगवान श्री कृष्ण हमें बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे अहंकार का कैसे अभाव। वास्तव में देखो, मैं आपको बताऊं कि अहंकार का मतलब क्या है, कि आप मैं, अहंकार का मतलब होता है मैं हूँ, ये तो है ही है ना, इसको हम कैसे त्यागे। अनहंकार मतलब आपको अहंकार का त्याग करना, अब मैं हूँ तो उसको मैं कैसे त्यागू। इस अहंकार को हम त्याग नहीं सकते हैं तो है, लेकिन वास्तविक अहंकार, आज संसार में हम अहंकार किसको कहते हैं, किस पर अहंकार करते हैं, जो हमारा जो शरीर है ना, इससे रिलेटेड जो जो चीजें होती है हमारे पास, उनके ऊपर कोई अपनी सुंदरता के ऊपर अहंकार करता है, तो कोई अपने ज्ञान के ऊपर अहंकार करता है, तो कोई अपने धन दौलत के ऊपर अहंकार करता है, तो कोई अपने घर परिवार के ऊपर, कोई अपनी हर चीज जो उन्हें विरासत में मिली होती है उन पर अहंकार करता है। लेकिन यह अहंकार तो सिर्फ शरीर तक ही सीमित है ना, वास्तव में तो हम शरीर है ही नहीं, और हम क्या है, हम आत्मा है। एक अहंकार तो आत्मा का भी होना चाहिए कि मैं आत्मा, अब हूँ तो हूँ ना, आत्मा हूँ और आत्मा का अहंकार। भगवान श्री कृष्ण 2.23 में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में बताते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती, जल उसे गला नहीं सकता। तो जब मैं इतनी अहम चीज हूँ रियलिटी में, मैं आत्मा हूँ, तो उसका अहंकार भी तो होगा ना। लेकिन आत्मा का अस्तित्व क्या है? आत्मा का अस्तित्व है कि वो भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और अंश का कार्य क्या है, अंश की प्रॉपर्टी क्या है? सिर्फ इतनी के वो अपने जो उसका अंशी है ना, जो अंश का कार्य है, अपने जहाँ से वो उद्भूत हुआ है, जिसका वो अंश है, अपने अंशी की सेवा करना। तो वास्तविक अहंकार तो यही है कि हम कृष्ण के अंश हैं, हम कृष्ण के दास हैं। ये दास भाव का जो अहंकार है ना, वो सबसे ज्यादा प्रिय अहंकार है कि मैं दास हूँ। मम गोपी भरता पद कमल दास दास दासान दास। जब ये देखो, अहंकार को दूर नहीं कर सकते, जो है सो है, मैं हूँ तो हूँ, लेकिन असल में मैं क्या हूँ यदि उस पर अहंकार करते हैं तो वह वास्तविक अहंकार। यहाँ पर वास्तविक अहंकार को के लिए भगवान श्री कृष्ण नहीं कह रहे हैं, अनहंकार के। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मिथ्या अहंकार के बारे में बताएंगे। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ अपितु आत्मा हूँ, तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है, मिथ्या अहंकार की बरसना की जाती है, यानी कि मिथ्या जो अहंकार है उसकी बुराई हो रही है यहाँ पर, वास्तविक अहंकार की नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ। यही आत्म भाव है। और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में भी पाया जाता है, यानी कि जब हम मुक्त अवस्था में जाएंगे तभी भी तो हम आत्मा तो रहेंगे ना। हमारी इंडिविजुअलिटी, जो हमारी इंफरादियत है, वो तो कभी खत्म नहीं होगी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। 2.12 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे च नादिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। यानी कि ऐसा कभी भी नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये राजा नहीं थे, और कभी भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि हम सब नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर श्री बाबा जी बोल रहे हैं, मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए प्रयोग किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब इस आत्म भाव यानी स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो वह वास्तविक अहंकार होता है। इस यानी कि जब हम आत्मा के लिए कोई बात करते हैं ना, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, तो ये मिथ्या अहंकार नहीं है, ये वास्तविक अहंकार है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अपना अहंकार त्याग देना चाहिए, कि अहंकार को त्याग देना चाहिए, बस अहंकार करना ही नहीं चाहिए कि मैं कुछ हूँ। लेकिन श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर वास्तविक बात बता रहे हैं, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे, क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप। लेकिन अब जो स्वरूप है तो है, जो खत्म होएगा ही नहीं तो फिर वो तो है ना। तो यहाँ पर लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना चाहिए। क्या त्याग करना चाहिए? कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से रिलेटेड किसी भी चीज पर अहंकार नहीं करना चाहिए, यह होता है अनहंकार। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने हमें 11 चीजें बताई। आगे की जो लाइन है वो मैं आपको साथ में पढ़ के बताती हूँ, प्लीज श्लोक को देखिए ना। श्लोक नंबर 9 है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अब देखो यहाँ पर चार चीजें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा डिटेल से बताएंगे और हम सब इनकी तकलीफों को, इन सब के दुखों को महसूस करते हैं उस टाइम पर जब वो हो रहा होता है, लेकिन समय के साथ साथ वो तकलीफें वो दुख हम भूल जाते हैं। लेकिन यही तकलीफों को बारंबार विवेचन करना, बारंबार याद करना, यह ज्ञान है। ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी हमें अपने कष्ट का एहसास होगा, और कष्ट का एहसास होगा तभी तो उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए, हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि ये सब हमारे लिए दुखदायक स्थितियां हैं। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं, यानी कि शास्त्रों में तो जन्म के बारे में बहुत बताया जाता है। जब शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो उसे इतना कष्ट मिल रहा होता है, इतना कष्ट मिल रहा होता है, वो उल्टा लटक रहा होता है। शास्त्र में कहा गया कि वो उल्टा लटक रहा होता है। पुनरपि जननी जठरा शयनम, जठरा कहते हैं एक अग्नि, एक ताप, जो जननी होती है उसकी माता होती है, उसके पेट में एक तरह की अग्नि हो रही होती, जैसे अग्नि होती है ना, वैश्वानर अग्नि, जो हमने अभी पढ़ा भी था चैप्टर नंबर 10 में कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, तो वो अग्नि ऐसे जल रही होती है पेट में। वैसे भी देखो हम जब प्रसाद खाते हैं जो भी, तो वो डाइजेस्ट होता है, अग्नि होती है ना। अब जहाँ ये अग्नि जल रही होती है चारों तरफ, और बच्चा जो छोटा नवजात शिशु जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है, गर्भ में होता है, तो उसके चारों ओर एक सर्कल बना होता है अग्नि का। ऐसे बोलते हैं ना, पुनरपि जननी जठरा शयनम, अग्नि का एक सर्कल बना हुआ होता है और उसमें वो तप रहा होता है। इतनी इतनी ज्यादा उसको इतना कष्ट सहना पड़ रहा होता है। मुझे ऐसा सोचने में लगता है, जो ऐसा होता है ना बारबेक्यू में जैसे चिकन को हैंग करते हैं उल्टा, और उसको इतनी अग्नि उसको दे रहे होते हैं, तो कैसे पिघल रहा होता है, कैसे उसको पीड़ा लग रही होती है। ऐसी उससे करोड़ों गुना ज्यादा पीड़ा, क्योंकि 9 महीने तक कंटिन्यूअस वहीं पर रहना है उसको, तो उससे भी बहुत ज्यादा अधिक पीड़ा उसको कष्ट वहां पर सहना पड़ता है। श्रीमद् भागवतम में जन्म के पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो इसको श्री प्रभुपाद जी और वेदव्यास जी बहुत ही डिटेल से बताएंगे। यह बलिभांति समझना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है, क्योंकि उस समय इतना ज्यादा कष्ट हो रहा होता है। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, भगवान से इतनी प्रार्थना करता है, भगवान मुझे यहाँ से निकालो, मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिलाओ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं आपको वचन देता हूँ कि बाहर जाकर मैं खाली आपकी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, बस मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिला दो। लेकिन श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, चूंकि हम यह भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिला है, अतएव हम जन तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। यानी कि हम फिर यहाँ पर संसार में आते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो वो सारी तकलीफों को भूल जाता है और अपने संबंधियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। इसी तरह से हम जब भूल जाते हैं, अब एक तकलीफ जब तुम्हें पता ही नहीं है तो उससे छुटकारा हासिल करने की कैसे तुम कोशिश करोगे, तो उसको याद नहीं कर पाते। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं, जैसे शास्त्रों में बहुत, जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है, शास्त्रों में बहुत बहुत बताया गया कि मृत्यु के समय इतना कष्ट होता है। जैसे एक बिच्छू जब हमें यहाँ संसार में कोई अगर डंक मारता है तो उसका जहर, उसका डंक का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो शास्त्र में आता है कि करोड़ों बिच्छू एक साथ जब डंक मारते हैं तो उस समय जितनी हमें पीड़ा होती है, उतनी पीड़ा तो केवल यमदूत के दर्शन से होती है। खाली उसको दर्शन करते हैं ना तब हमें इतनी पीड़ा हो रही होती है, और उसको जब वो हमारे प्राण खींचता है, जब वो हमें यहाँ संसार से अपने मृत्यु लोक से लेकर जाता है यमपुरी, और रास्ते में इतनी कठिनाई, गरुड़ पुराण मैंने पढ़ा था, उसमें इतनी कठिनाइयां कि 3 दिन तक मुझे नींद नहीं आती थी, इतना जब मैंने वो शास्त्र पढ़ा था। तो यहाँ पर प्रामाणिक शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया कि मरते समय जीव की कितनी दुर्दशा होती है, उनकी विवेचना की जानी चाहिए। यानी कि ये सारी चीजें हमें रियलाइज करनी चाहिए, समझनी चाहिए, बारंबार उनका अध्ययन करना चाहिए। और आगे बता रहे हैं, चलो ठीक है, ये तो हम भूल जाते हैं, जन्म और मृत्यु की तकलीफें भूल जाते हैं, लेकिन कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता। कोई भी बूढ़ा होना नहीं चाहता, जरा और व्याधि से कौन नहीं बचना चाहता, लेकिन उनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही मुख्य बात बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि देखो, जब तक आप ये रियलाइज नहीं करोगे कि हमें कितनी तकलीफें होती हैं जन्म लेते समय, मृत्यु के समय, बारंबार जन्म लेते हुए जब बूढ़े होते हैं, जब तकलीफें आती हैं, जब शरीर कष्ट में होता है, जब तक हम इन चीजों से जीवन में निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बनाएंगे ना, जब दुखी नहीं हो जाते, जब इन सबको रियलाइज नहीं करते, महसूस नहीं करते। यहाँ पर लोगों को बोलो ना, आप दुखी हो, यह संसार दुखालय है, अशाश्वत है, इसमें आकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो बोलेंगे किधर है दुख, हमें तो मजा आ रहा है संसार में, एंजॉय करते हैं, फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ये खाते वो खाते, किधर है दुख, क्यों बोलते हो दुख। तो ये इसलिए वो कृष्ण भक्ति में उन्नति नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें रियलाइज ही नहीं हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं दुखी हूँ, तो वो कैसे अपने दुखों का निवारण करना चाहेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण जब तक नहीं बनता, जब तक हमें ये एहसास नहीं होता कि हमें कितना दुख मिल रहा है, तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, तब तक हम सीरियस नहीं होंगे। अभी भी देखो, हमारे कितने सारे लोग यहाँ पर ग्रुप में जो भगवद गीता को सीरियस नहीं ले रहे हैं, सुन ही नहीं रहे, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि क्यों इतना डीप क्यों जा रहे हैं हम, भगवद गीता को डीप नहीं जाएंगे तो ये कोई टाइम पास नहीं है यार, ना तुम लोगों के पास इतना टाइम है कि उसको पास करो, और ना मेरे पास इतना टाइम है कि तुम लोगों का एंटरटेनमेंट करवाऊं। रियलिटी समझ नहीं है हमें, क्या श्री प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं, क्या हमारा शास्त्र है, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है, क्या गोल है, उसकी तरफ आना है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि यहाँ तक बताया ना, दुख दोषानुदर्शनम यानी इनके जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के दुखों को देखना, दर्शनम यानी उनको रियलाइज करना। आगे नवे श्लोक की दूसरी लाइन में कहते हैं, असक्ति अनभिश्वंग पुत्र दार गृहादिशु, असक्ति इराना, इसका मतलब है, आसक्ति का मतलब होता है बिना आसक्ति के, अनभिश्वंग मतलब बिना संगति के, किसकी आसक्ति और संगति के बिना, पुत्र यानी पुत्र की, धार यानी स्त्री की, ग्रह आदिशु मतलब घर आदि के, यानी कि पुत्र संतान पत्नी और घर की आसक्ति से रहित होना। इसके बारे में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जहाँ तक पत्नी तथा घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके लिए कोई भावना नहीं होनी चाहिए। देखो, यदि हम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे हमारे कर्तव्य होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी के प्रति कोई भावना ही नहीं रखें, ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, रियलिटी में ये सब तो हमारे स्नेह के अधिकारी होते हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए कि नहीं भाई, मेरे घर वाले ये पसंद नहीं करते हैं तो मैं ये नहीं करूं। हमारा वास्तविक लक्ष्य तो कृष्ण प्रेम में प्रगति करना है। यदि सब साथ दे रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं तो उनकी वजह से हमें अपनी भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। देखिए, चाहे पति हो या पत्नी, जो भी कृष्ण, जो भी कैसी में आता है, उसका पहला कर्तव्य यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आपका कर्तव्य है कि आप अपने घर को सुखमय बनाओ, और उसकी सर्वोत्तम विधि, आप क्या समझते हो कि घर में थैलियां भर भर के चीजें लाना, घर का अनाज भरना, सब्जियां लेकर आना, फ्रूट्स लेकर आना, बहुत सारे घर में ड्रेसेस वगैरह अपने घर वालों को देना, और ये सब जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त करने से क्या तुम्हारा जीवन सुखमय होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता, कितने दिन चलेंगे तुम्हारे ये सारे सामान। वापिस खत्म हो जाएंगे, वापिस से वही दुख। तो वास्तविक सुख जो श्रीला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भावनामृत, कि सबको कृष्ण की भक्ति में लगाना। यदि कोई कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो वह अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है। केवल एक ही तरीका है जीवन में सुख भरने का कि सबको कृष्ण भक्ति सिखाई जाए। श्री प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि समग्र संसार दुख भोग रहा है, इसकी वजह केवल यही है कि लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। ये बहुत ही सरल और मीठी इतनी अच्छी विधि है कि इसमें केवल क्या करना क्या है, ईटिंग चैंटिंग। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते थे केसी के बारे में कि आपको खाली ए बी सी डी ई यहाँ तक याद करना है, बस आगे के अल्फाबेट्स याद नहीं करने। कैसे? कृष्ण भावना केसी में क्या है? ए, ए फॉर एसोसिएशन यानी भक्तों का संगत करना है। बी, बी फॉर भागवत गीता एंड भागवतम को रीड करना है और श्रवण करना है। सी, सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। डी फॉर डांसिंग, मजा करो, बस यहाँ तक डांस करो, महामंत्र का कीर्तन करो और डांस करो। और उसके बाद ई, ई से क्या करना है? ईटिंग, क्या करना है? प्रसाद खाना है, बस ए बी सी डी ई यहाँ तक, चैंटिंग ईटिंग और डांसिंग। अगर ये भी कर लेना हम लोग ए बी सी डी ई यहाँ तक भी याद कर लेना तो भी हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन होता है। कृष्णा अर्पित भोजन का उचिष्ट ग्रहण करना होता है। भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथ पर विचार विमर्श करना होता है और अष्ट विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होता है। देखो, सुखी प्राप्त करना है ना, ज्ञान हासिल करके सुखी प्राप्त करना है ना, तो संसार की समस्त सुविधाएं भी क्यों ना तुम अर्जित कर लो। यहाँ पर शास्त्र तो यही कहता है कि मनुष्य सुखी तो तब होगा जब वो कृष्ण की शरण में जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दें, यही रियल सुख है, यही अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपकी रियल ऑनेस्टी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं जो, लेकिन ये तो उनके शरीर की ख्वाहिशें हैं ना, और ये शरीर उस ये जो इंद्रियां है ना वो धधकती हुई अग्नि है। जितना घी डालेंगे वो तृप्त थोड़े ना होंगी। कभी बोलेंगे नहीं कि बस करो, अग्नि में कभी हम लोग घी डालते हैं जब हवन हो रहा होता है तो कभी अग्नि बोलती है हाँ पेट भर गया, और भी भड़कती है। उसी तरह इंद्रियों को जितना ही इंद्रिय सुख देते जाएंगे वो उतना ही भड़केंगी। लेकिन जब हम अपने मन को खुश कर देंगे, जब मन प्रसन्न हो जाएगा कृष्ण भक्ति से, तो इंद्रियां स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगी। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल बैठकर साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावना में विकसित करने में ढाल सके तो वह पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि अगर इतने अच्छे तरीके से आप घर में रहते हो, जप करते हो, भगवान की विग्रह की सेवा करते हो, प्रसाद अर्पण करके खाते हो, तो फिर आपको पारिवारिक जीवन त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल ना रहे, यहाँ पर एक बात तो श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मेन चीज तो ये है कि आपकी आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए, आपको कैसी में इंक्रीमेंट करनी ही पड़ेगी। अगर नहीं हो रही है, कोई बाधा बन रही है, कोई ऐसा कुछ ऐसा है जो आपको भक्ति करने नहीं दे रहा है, तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का साक्षात करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे। देखो, जीवन का गोल, जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है, और यदि संकल्प दृढ़ हो ना तो संसार की कोई भी ताकत हमें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। यही कठिनाई है कि अभी हमारा संकल्प ही दृढ़ नहीं हो रहा है। और यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दे, जिस प्रकार अर्जुन ने किया। अर्जुन अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, किंतु जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार में बाधक रहे हैं, तो उसने कृष्ण के आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उसने उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन के सुख दुख से विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है और ना ही पूर्ण दुखी। यह संसार तो अशाश्वत है। यदि किसी को सुख मिलता है तो डेफिनेटली उसके बाद दुख मिलेगा, और यदि किसी को दुख मिल रहा है तो आगे जाकर उसे सुख मिलना ही है। कुछ नित्य नहीं है, अनित्यम असुखम लोकम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.32। अर्जुन, यह संसार अनित्य है, असुख है, और मैंने तुम्हें क्यों भेजा है? वही बात इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम एवं प्राप्य भजस्वम। इसे प्राप्त करके आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि भजस्वमाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही सबसे बड़ा ज्ञान है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ रहिएगा।